कभी किसी बात पर झुंझलाहट, और ये सब कब आदत बन गया ज्ञान कपूर को खुद भी पता नहीं चला। उन दोनों के बीच जो रिश्ता बना था उसे नाम देना मुश्किल था, लेकिन उसमें एक अजीब सा यकीन था। न्यारा उस घर में खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती थी। उसे पता था वो उसके साथ कभी बदतमीजी नहीं करेगा और ना ही उसे असहज महसूस होने देगा। शायद इसी वजह से वो बेझिझक थी, निडर, खुद जैसी। आज वही बेपरवाह आवाजें नहीं थी, वही हलचल नहीं थी। खाना सामने रखा था मगर ज्ञान कपूर का मन कहीं और था। हर तरफ फैली ये शांति उसे खाने को दौड़ रही थी। ये सन्नाटा अब सुकून नहीं था, ये खालीपन था। उसने प्लेट की तरफ देखा, फिर चारों ओर। पहली बार उसे एहसास हुआ घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, कभी कभी एक इंसान की मौजूदगी ही उसे घर बना देती है, और आज वो इंसान घर में नहीं था। स्क्रीन पर किसी क्लाइंट का नाम चमक रहा था। उसने फोन उठाते हुए कहा, मैं अभी बात करके आती हूँ, शायद कोई जरूरी मामला हो। इतना कहकर निया कमरे की तरफ चली गई। लिविंग रूम में अब सिर्फ श्याम खन्ना और न्यारा रह गए थे। एक पल के लिए खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जिसमें सवाल तैरने लगते हैं। न्यारा ने चुप्पी तोड़ते हुए श्याम खन्ना की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, सच सच बताइए सर, आखिर चल क्या रहा है? इतनी रात को आप यहाँ आए हैं और ऊपर से मेरी बहन आपको लगातार टाल रही है, ये कोई मामूली बात तो नहीं लगती। वो जरा करीब आई और मजाकिया लेकिन तेज आवाज में बोली, झूठ मत बोलिएगा, मैं वकील हूँ और झूठ सबसे पहले पकड़ लेती हूँ। श्याम खन्ना कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और सीधा सच बोल दिया, मैं तुम्हारी बहन के पीछे घूम रहा हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ मगर वो मुझे घास भी नहीं डालती। न्यारा पहले तो चौंकी, फिर हल्के से हंस पड़ी। तो बस इतनी सी बात है, उसने कंधे उचकाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपको अपना जीजू बनाने में कोई एतराज नहीं। श्याम खन्ना ने उसे हैरानी से देखा, सच में? बिल्कुल, न्यारा बोली। फिर अचानक उसकी आंखों में शरारत की चमक आ गई, वो उस तरफ देखने लगी जिधर निया कमरे में गई थी। वैसे, उसने आवाज धीमी कर ली, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? श्याम खन्ना तुरंत सतर्क हो गया। न्यारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा प्लान जिसमें मेरी दीदी खुद समझ जाएंगी कि आप उनकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। न जबरदस्ती, न ड्रामा, बस थोड़ा सा दिमाग और सही टाइमिंग। श्याम खन्ना की आंखों में उम्मीद झलकने लगी। हाँ बोलो, क्या प्लान है? न्यारा ने सोफे से टिकते हुए सोचने लगी। न्यारा थोड़ी देर श्याम खन्ना को देखती रही, फिर हल्की मजाकिया अंदाज में बोली, तो अगर आप मेरी दीदी के साथ शादी के लिए सच में इंटरेस्टेड है तो सीधी बात है सर, आपको अपने घर से रिश्ता हमारे घर भेजना होगा। मेरी माँ बहुत समझदार हैं और उनका बस चले तो दीदी की नहीं मेरी भी शादी तय कर दें। कहते हुए वो हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ झलक रही थी। श्याम खन्ना ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो रिश्ता कैसे भेजना है? आपको ही ढूंढना पड़ेगा क्या? मैंने आपको रास्ता बता दिया, अब आगे रास्ता कैसे पूरा करना है ये तो आपको खुद सोचना होगा, न्यारा ने कहा। अच्छा, ऐसे काम हो जाएगा? श्याम ने जैसे ही हामी भरी, न्यारा ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। बिल्कुल हो जाएगा, न्यारा बोली। मैं आपको सलाह दे रही हूँ और याद रखिए, इस सलाह की फीस मैं शादी के दिन लूंगी। साली को भूल मत जाइएगा सर, और हाँ, मुझे डायमंड की रिंग चाहिए होगी। श्याम जोर से हंस पड़ा, फिक्र मत करो, रिंग क्या, डायमंड का पूरा सेट मिलेगा, बस तुम्हारी बहन मान जाए। उसी पल पीछे से आवाज आई, क्या मान जाए? निया फोन पर बात खत्म करके वहीं आ चुकी थी। उसकी आंखें कभी श्याम खन्ना पर जातीं, कभी न्यारा पर, जैसे कुछ अधूरी बातें पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। न्यारा जरा भी नहीं घबराई, तुरंत मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, कुछ नहीं दीदी, हम लोग तो बस ऑफिस की बात कर रहे थे। निया ने दोनों को गौर से देखा। ऑफिस की बातें? उसने धीमे से दोहराया। श्याम खन्ना ने चाय का कप उठाया और बात को हल्का करते हुए कहा, हाँ वही पुराने केस की डिस्कशन थी। निया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद श्याम खन्ना चला गया। घर में फिर से सन्नाटा छा गया, दोनों बहनें भी अपने अपने कमरों की तरफ सोने चली गईं। लेकिन उस रात ज्ञान कपूर की आंखों में नींद नहीं थी, वो बार बार करवट बदल रहा था, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है। न्यारा का आज घर पर ना होना उसे अजीब सा खालीपन दे रहा था। इतने बड़े घर में रहते हुए भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल अकेला हो। खामोश कमरा, दीवारों पर टिक टिक करती घड़ी और दिमाग में घूमते सवाल, नींद उससे कोसों दूर थी। उधर दूसरी तरफ जेसिका तैयार हो चुकी थी। वो पूरी तरह सजी समरी हुई नीचे आई। मुझे किटी पार्टी में जाना है, उसने विक्रांत से कहा। विक्रांत ने अखबार से नजर उठाकर उसे देखा। तुम्हें जाने की जरूरत क्या है? तुम्हारे आदमी मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देते, उसने सख्त लहजे में कहा। देखो विक्रांत, मेरे पास फोन है, अगर मुझे किसी को कुछ बताना होता तो मैं अब तक बता चुकी होती, और वैसे भी मुझे कई फोन आ रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए जाना है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। विक्रांत ने दो मिनट तक सोचा, फिर बोला, ठीक है तुम चली जाओ, मेरा आदमी तुम्हें छोड़ देगा। जेसिका ने तुरंत कहा, नहीं मैं गाड़ी खुद ड्राइव कर सकती हूँ। लेकिन विक्रांत ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम बेकान में फिक्र करती हो, आराम से बैठो, वही गाड़ी चलाएगा। जेसिका ने ज्यादा बहस नहीं की, वो गाड़ी में बैठ गई, होटल की तरफ गाड़ी पर चली। ड्राइविंग सीट पर विक्रांत का आदमी था, लेकिन विक्रांत ने यही बात खत्म नहीं की थी, उसने पहले से ही दो और लोगों को आदेश दे दिए थे जेसिका पर नजर रखने के लिए। हुक्म साफ था, अगर वो पार्टी के बाद सीधे घर लौटने के बजाय कहीं और जाती है तो उसे तुरंत खबर मिलनी चाहिए। कुछ देर बाद जेसिका पार्टी में पहुंच गई। होटल की चमक दमक, तेज म्यूजिक और हंसी मजाक से भरा माहौल, सब कुछ बाहर से बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन जेसिका जानती थी, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये उसकी आज़ादी की एक छोटी सी कोशिश है, और शायद किसी बड़े तूफान की शुरुआत भी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई, और दूर कहीं नजर रखने वाली आंखें हर कदम को गिन रही थीं। असल में जेसिका का इरादा पार्टी में ज्यादा देर रुकने का था ही नहीं, उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, आज नहीं तो कभी नहीं, मतलब वो गायब होना चाहती थी। इसीलिए वो अपने पर्स में कुछ जरूरी ज्वेलरी भी साथ लेकर आई थी, उसे पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी, ये वो अच्छी तरह जानती थी। लेकिन वो अभी इंद्र को कुछ नहीं बताना चाहती थी, उसका एक ही भाई बचा था, उसे खतरे में डालने का सवाल ही नहीं उठता था। करीब एक घंटे तक वो किटी पार्टी में मौजूद रही। होटल के हॉल में हंसी, बातें और चहल पहल थी, मगर जेसिका के चेहरे की बेचैनी छुप नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वहां मौजूद औरतें और सहेलियां पूछने लगीं, क्या हुआ जेसिका, आज तुम कुछ अलग लग रही हो? वो हर बार हल्की सी हंसी में बात टाल देती, अरे कुछ नहीं बस थक गई हूँ। तभी सादिया उसके पास आई, जेसिका सच बताओ तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों वॉशरूम की तरफ चली गईं। आईने के सामने खड़ी जेसिका खुद को भी नहीं पहचान पा रही थी। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सादिया ने नरमी से पूछा। नहीं बस ऐसे ही, जेसिका ने नजरें चुराते हुए कहा। सादिया ने उसका हाथ थाम लिया, अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। असल में जेसिका उसी पल उससे मदद मांगने वाली थी, भागने के लिए, निकलने के लिए, खुद को बचाने के लिए। लेकिन तभी उसकी नजर वॉशरूम एरिया के सामने खड़े एक आदमी पर पड़ गई। एक पल लगा और अगले ही पल सब साफ हो गया। वो आदमी विक्रांत का था। जेसिका को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो गया था वो यहाँ से भाग नहीं सकती। उसने बिना कुछ कहे सादिया से दूरी बना ली। थोड़ी देर और रुककर किसी तरह खुद को संभालते हुए वो पार्टी से निकल गई। ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है, उसने मन ही मन कहा।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें।